ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं साहुवर्जायिरिये अरहन्ते वन्दिऊणसिद्धेवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीर सेनाचार्य रचित धवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अभी ये आठवीं पुस्तक जो है, तृतीय खंड, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 106 पर आ गए हैं, 106। 55 नंबर के सूत्र में हमने बहुत अनेक प्रकृतियों के नाम देखे थे। अब यहाँ प्रकरण चल रहा है मार्गणाओं में कौन बंधक है कौन अबंधक है। गति मार्गणा में नरक गति की बात चल रही है, तो नरक गति में तो चार गुणस्थान होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी प्रकृतियाँ पहले से चौथे तक बनती, उसकी बात हमने विस्तार से देखी। तीर्थंकर प्रकृति के बारे में भी अलग अलग, जो कुछ तीसरे नरक तक उसका बंध होता है, उसकी भी बात देखी थी। अब यहाँ सातवें नरक के बारे में जो कोई विशेषताएं हैं उसकी बात यहाँ चल रही है। तो सातवें नरक के नारकी जो है, हम उसकी लिस्ट फिर पढ़ते हैं, 105 पृष्ठ पर है, 55 नंबर का सूत्र यहाँ से शुरू होता है ना पहले पृष्ठ पर। तो सातवीं पृथ्वी के नारकियों में 5 ज्ञानावरणीय, 6 दर्शनावरणीय, 7 रसाता वेदनीय, 12 कषाय, पुरुष वेद, हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस्व कारमान शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्रषभ सहनन, वर्णगंध रसस्पर्श, अगरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस बादर पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग सुस्वर, आदेय, यशकीर्ति अयशकीर्ति, निर्माण और 5 अंतराय, इनका कौन बंधक है कौन अबंधक है। देखो इसमें क्या लिए, एक तो ध्रुवबंदी लिए है, जिसकी विच्छित्ति नहीं हुई है इसे लिए, और दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में जिसकी जिसकी विच्छित्ति होती है उनको छोड़कर, यानी चार ही गुणस्थान वाले जीव जिन प्रकृतियों को बांधते हैं उतनी प्रकृतियां यहाँ ली, क्योंकि आगे कहेंगे मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत तक बांधेंगे, इसलिए प्रशस्त व्याहगति को ही लिया, सुस्वर को ही लिया, दूसवर को छोड़ दिया, क्योंकि पहले और दूसरे गुणस्थान वाले सुस्वर दूसवर दोनों में ऑप्शनली बांधेंगे। यहाँ ऐसी प्रकृतियां ली है जो पहले से चौथे तक सभी जीव बांध सकते हैं। तो उसके उत्तर में हमने पढ़ा था कल, मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक बंधक है, ये बंधक है, अबंधक नहीं है। अबंधक नहीं है क्योंकि चार ही गुणस्थान होते हैं, इसलिए नारकियों के चारों ही गुणस्थान हमने देख लिए यहाँ, 1 से 4, अभी और कोई गुणस्थान नहीं है, इसलिए अबंधक नहीं है ऐसा कहा। अब इसमें से जो अर्थ निकलता है उसकी प्ररूपणा भी बता रहे हैं। इस देशामर्शक सूत्र के द्वारा सूचित अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। यहाँ उदय से बंध पूर्व में या पश्चात विच्छिन्न होता है यह विचार नहीं है। पहले बंध की विच्छित्ति होती है कि पहले उदय की होती है, क्योंकि यहाँ उसकी संभावना नहीं है। संभावना ने पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है उसको बताते हैं। 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, पंचेंद्रिय जाति, तेजस कारमान शरीर, वर्णगंध रस स्पर्श, अगुरु लघु त्रस बादर पर्याप्त, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अयश कीर्ति, निर्माण और 5 अंतराय, वो वो तो उनके क्यों नहीं वो तो बता दिया उन्होंने ऊपर, ये आगे की बात चल रही है। इनका स्वोदय बंद होता है, स्वोदय ने उनका उदय है और उनका बंद भी हो रहा है। ज्ञानावरणी का पांचों का उदय है, उनका बंद हो रहा है। अंतराय का सबका उदय है, उसका बंद हो रहा है। चार ज्ञानावरण का उदय भी है और बंद भी है। इस तरह से अभी जो हमने लिस्ट पढ़ी, तेजस कारमान का तो हमेशा ही उदय चलता है, वर्ण रसगंध स्पर्श का इसका स्थिर अस्थिर शुभ शुभ, ये तो हमेशा उदय रूप प्रकृतियाँ पाई जाती हैं। सभी गुणस्थानों में हर समय इसका उदय होगा, इसलिए स्वोदय से बनती है ऐसा कहा। क्योंकि यहाँ ये ध्रुवोदयी प्रकृतियाँ, ध्रुवबंदी नहीं कहा, ध्रुवोदयी कहा, यानी हर समय इसका उदय पाया जाता है। विग्रह गति में भी, अपर्याप्त अवस्था में भी इनका उदय तो होगा ही। नारकियों के लिए पंचेंद्रिय जाति लिया है, अन्य में फिर कहेंगे वो पंचेंद्रिय जाति का उदय वो कहाँ पर है क्या है उसकी बात करेंगे। अब यहाँ नारकियों की, चिरियंचों में तो वैरायटी होगी, तो उसमें तो हर एक की जाति की अलग अलग बात करेंगे। नारकियों में एक पंचेंद्रिय जाति ही पाई जाती है, तो उसका उदय तो विग्रह गति से ही शुरू हो जाता है। नरक गति का, पंचेंद्रिय जाति का, त्रस बादर पर्याप्त का, ये सबका उदय वहां से शुरू है। अब इसमें से जो छूट गई उसकी बात करेंगे। अभी निद्रा प्रचला, प्रचल हुआ प्रचला, साता व असाता वेदनीय, स्वल्प विराम कौमा, बारह कषाय, हास्य हो हुआ है उसको हा करना, हास्य रति अरति शोक भय और जुगुप्सा का, यहाँ यहाँ है ने, ये नारकियों में सातवें नरक की बात चल रही है। यहाँ स्वोदय परोदय बंद होता है क्योंकि ये अध्रुवोदयी प्रकृतियाँ हैं। जैसे निद्रा प्रचला कभी कभी उदय होता है, अन्य जो चार दर्शनावरण देखे उसका तो निरंतर उदय नींद में भी और जागृत अवस्था में भी, और इनका कभी कभी होगा। तो जब उदय नहीं होगा फिर भी बंद तो हो ही रहा है, तो उसको कहेंगे ये परोदय से बन रही है। जब निद्रा का उदय है और बन रही है तब कहेंगे स्वोदय से बन रही है। साता असाता वेदनीय ऐसा भी है, उदय साता या असाता का हो और बंद भी साता या असाता का होता है तो स्वोदय परोदय दोनों से बनती है। बारह कषाय में क्रोध का उदय है तो क्रोध भी बंधेगा तो स्वोदय से बंधा है, और मान माया लोभ के उदय में क्रोध बनता है तो कहेंगे परोदय से बनता है। हाँ से रति अरति शोक के बारे में भी ऐसा है, एक युगल का उदय है और बंधक दोनों में से किसी का होगा, या ऑप्शनल है नहीं इसलिए अध्रुव उदय कहा। भय जुगुप्सा के बारे में भी हमने देखा था, ये भय जुगुप्सा तो बंधने वाली तो निरंतर बनती है, हर समय बनती है, तो किसी के भय जुगुप्सा दोनों का उदय होगा, किसी का अकेले भय का उदय होगा, किसी के अकेला जुगुप्सा, किसी को एक का भी नहीं, तो तब कहेंगे ये परोदय से बन रही है। उपघात परघात उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर, इनका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय परोदय बंद होता है। क्यों ऐसा कहा? हाँ, क्योंकि विग्रह गति में सातवें नरक का नारकी, विग्रह गति में कौन से गुणस्थान हो गए? एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। तो ये जो उपघात है, परघात है, उच्छ्वास है और प्रत्येक शरीर है, इनका उदय वहां नहीं पाया जाता, फिर भी बंद तो होगा, इसलिए वहां पर वो परोदय से बंद कहलाएंगे। परंतु पर्याप्त अवस्था में उदय होने पर बंद होता है तो कहेंगे स्वोदय से बंद होता है। शेष गुणस्थानों में स्वोदय ही बंद होता है क्योंकि शेष गुणस्थान तो पर्याप्त अवस्था वालों के हैं, तो उनमें तो ये उपघात परघात उच्छ्वास प्रत्येक शरीर सबका उदय पाया ही जाता है, और उसके उदय में ये बनते हैं तो कहेंगे वहां स्वोदय से बनते हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि को छोड़कर शेष गुणस्थान यहाँ अपर्याप्त काल में नहीं होते तो कहाँ हो सकते हैं? हाँ बोलो। हाँ, अपर्याप्त काल में अन्य गुणस्थान यहाँ नहीं होते तो कहीं तो होते होंगे ना। हाँ, पहले नरक में सम्यक तो उसके सहित अकेले पहले ही नरक में जा सकता है। दूसरा गुणस्थान तो नारकियों को होता ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में, और तीसरा तो किसी गति में नहीं होता। तो यहाँ इन्हें सातवें नरक की बात चल रही ना अपनी। अब पुरुष वेद कॉमा लगाना, औदारिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, वज्र शब्द सहनन, प्रशस्त विहाय गति, फिर कॉमा, सुभग सुस्वर आदय और यश कीर्ति प्रकृतियों का परोदय बंद होता है। देखो ये ऐसी नाम लिए हैं कि इनका उदय तो नरक में होता ही नहीं, क्योंकि इनके उदय का यहाँ विरोध है। पुरुष वेद यहाँ तो नपुंसक वेद का ही उदय है, औदारिक शरीर नहीं, उसके तो वैकृत शरीर नाम कर्म का उदय चलता है, अंगोपांग भी वही होता है, संस्थान या हुंड संस्थान का उदय है, सहनन तो होता ही नहीं है, नारकियों के अप्रशस्त विहाय गति का उदय चलता है, दुर्भग दुस्वर अनादेय अयश कीर्ति, ये सारे अशुभ प्रकृतियों का उदय है। इसलिए ये जो शुभ प्रकृति बनती है तो अन्य के उदय में यानी परोदय में बनती है। अब ये निरंतर बंदी है कि नहीं उसकी बात करेंगे। पांच ज्ञानावरणीय कौमा, छह दर्शनावरणीय, पांच पा के ऊपर बिंदी लगाना, पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, बारह कषाय, भय जुगुप्सा, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक तेजस्व कार्मण शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग, वर्णाधिक चार, जहां कॉमा नहीं वहां देते रहना, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर, निर्माण और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंद होता है, क्योंकि ये प्रकृतियां यहां ध्रुव बंदी है। यहां फिर शब्द डाला, देखो फिर देखते हैं, पांच ज्ञानावरणी तो सर्वत्र ध्रुव बंदी है, छह दर्शनावरणी भी सर्वत्र ध्रुव बंदी है, बारह कषाय भी जब तक अभी इच्छित नहीं तब तक तो ध्रुव बंदी है ना, हमने उसको भी देखा था, भय जुगुप्सा भी ध्रुव बंदी है प्रकृति, पंचेंद्रिय जाति अभी नारकियों के लिए पंचेंद्रिय जाति तो ध्रुव बंदी यानी यहां निरंतर बंदी कहेंगे उसको, औदारिक तेजस कारमान शरीर, तेजस कारमान तो सबके लिए ध्रुव बंदी है, परंतु नारकियों के लिए तो औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग का ही बंद होगा, इसलिए उसको उसके लिए भी वो निरंतर बंदी है। वर्णाधिचार तो सबके लिए ध्रुव बंदी होती है, अगुरु लघु उपघात भी। अब ये परघात उच्छ्वास है तो नारकी तो पर्याप्त नाम कर्म को बांधते हैं, तो ये इसको भी बांधेंगे ही, यानी कोई नारकी नहीं बांधेगा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से वे पर्याप्तों में जन्म लेंगे, अपर्याप्त नाम कर्म नहीं बांधते, जो अपर्याप्त बांधता है वो उच्छ्वास को नहीं बांधेगा। नारकी मनुष्य अभी यहां सातवें नरक की बात है, ये तो तिर्यंच गति को तिर्यंच गत्यानुपुरी आदि को बांधेगा, तो उसके साथ पंचेंद्रिय जाति को बांधेगा, त्रस बादर पर्याप्त को बांधेगा, उसके साथ परघात उच्छ्वास, ये सारी उसके मिलती हुई पूरक ऐसी प्रकृतियां वो बांधेगा। यहां तो मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत तक की बात की, बारह कषायों की, वो पहले भी हमने देखा था ना, सब में कॉमन बारह कषाय है, पुस्तक नहीं है आपके पास, इनका निरंतर बंध होता है, निर्माण तो हरेक के लिए निरंतर बंदी है, पांच अंतराय भी, ये प्रकृतियां यहां ध्रुव बंदी है। साता व असाता वेदनीय, अब ये ऑप्शनल कौन सी है, तो उसको हम सांतर वाली कहेंगे ना, क्योंकि ये साता असाता साता बंदेगी या असाता, तो ये प्रतिपक्ष वाली है। साता असाता वेदनीय, हास्य रति अरति शोक, ये युगल जो है वो ऑप्शनली बनता है, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश कीर्ति और अयश कीर्ति प्रकृतियों का सांतर बंध होता है। ये जो स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ है उसके बारे में, दोनों का उदय हर समय चलता है, वो ध्रुवोदयी है, पहले गुणस्थान से तेरहवें तक हर समय स्थिर का भी उदय है और अस्थिर का भी है, परंतु बंध ये प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं, या स्थिर का बंध होगा या अस्थिर का होगा। तो जब स्थिर का होता है तो अस्थिर का रुक गया, अस्थिर का होता है तो स्थिर का रुक गया, तो उसको कहेंगे सांतर बंधी है। प्रतिपक्ष होने के कारण सांतर बंध कहा, क्योंकि सब गुणस्थानों में इनका एक और अनेक समय तक बंध संभव है। जिसका एक ही समय तक बंध संभव है उसको कहते हैं सांतर। वो एक समय के अनेक समय तक भी बंध सकती है, परंतु एक समय बंध कर भी रुक सकती है, इसलिए उसको सांतर कहा। और निरंतर, निरंतर की परिभाषा में हमने देखा अंतर्मूर्त आदि, आदि में समझ लेना, यानी मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो लगातार बंधेगी, उसको कहते हैं निरंतर। और जो एक समय तक बंद होकर मिट सकता है, सकता है वो, तो वो भी लगातार बन सकती है कुछ समय तक, उसका निषेध नहीं है, परंतु एक समय में बंद होकर रुक सकता है, इसलिए उसको सांतर कहते हैं। लिखा ना इसका, क्योंकि सब गुण स्थानों में इनका एक और अनेक समय तक बंध संभव है। पुरुषवेद समचतुरस्य संस्थान वज्र ऋषभ सहनन प्रशस्त विहाय गति सुभग सुस्वर और आदेय, इन प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि व सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थानों में सांतर बंध होता है। सांतर यूं क्योंकि वहां उनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं जिनकी अभी बंध विच्छित्ति नहीं हुई है। देखो पुरुष वेद पहले गुणस्थानों में तीनों वेद में से कोई एक बंधेगा, और दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद या पुरुष वेद बंधेगा। इसी तरह ये संस्थान में भी पहले गुणस्थान में से तो छह संस्थान में से एक बंधेगा, और दूसरे वाला पांच संस्थानों में से एक बंधेगा, आगे वो बीच वाले चार की भी उचित्य होगी, तो तीसरे और चौथे वाला एकमात्र वज्र ऋषभ नारा सहनन को बांधेगा। हर एक के बारे में इसे समझना, उसकी जो प्रतिपक्ष प्रकृतियां है वो जहां बंध विच्छित्ति होती है उसके बाद इनका बंध होगा सतत, उसके पहले तो वो प्रतिपक्षी सहित है, क्योंकि यहां इनका एक अनेक समय तक बंध संभव है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में उनका निरंतर बंध होता है, क्योंकि अभी वो प्रतिपक्षी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है, उसके बाद यही प्रकृतियां बंधेंगी, तो उसको कहेंगे निरंतर बंध। लिखा ना आगे, क्योंकि यहां इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। इन प्रकृतियों को बांधने वाले मिथ्या दृष्टि नारकी के अभी उनके प्रत्यय कितने होते हैं? हाँ, तो मूल प्रत्यय चार, नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 51, किस किस को छोड़ा 51 में? हाँ, औदारिक औदारिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, पचपन में से चार निकले ना, पहले हमने पचपन में आहारक को निकाला ही था, 57 में से आहारक को निकाला तो 55 रह गए थे अन्य के लिए, अब यहाँ के लिए और कोई कौन से नहीं हो गए बोलो? वेद दो नहीं हो गए, पुरुष वेद स्त्री वेद नहीं होगा, और अवदारिक अवदारिक मिश्र नहीं होगा, तथा एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 10 और 18 होते हैं, ये भी हमने विस्तार से देखे थे बहुत बार। सासाधन समय दृष्टि के मूल प्रत्यय 3, नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 44, हमेशा हम कितने देखते थे? 55 में से 5 माइनस करते थे, हाँ तो 50 होते थे, अब यहाँ जो 51 हमने देखे थे 51 में से 5 गए, कितने रहे? 46, उसमें से कौन से निकालना? भी कारमाण और वैकृत मिश्र, क्योंकि सासाधन वाला अपर्याप्त नहीं होता ना, इसलिए 1 समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 10 और 17 होते हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि गुण स्थानों में मूल प्रत्यय 3, उत्तर प्रत्यय 40, क्योंकि यहाँ भी अपर्याप्त अवस्था है ही नहीं है। हाँ, अनंत अनुबंधी चार गए, क्योंकि हमने 44 देखे थे सासाधन वाले के, अनंत अनुबंधी गए हैं तो 40 रहे। तथा एक समय संबंधी जघन्य व उत्कृष्ट प्रत्यय 9 और 16 होते हैं। इसकी संख्या में तो कोई वेरिएशन नहीं, वो तो उतने ही रहते। इन सब प्रकृतियों को अभी कौन से गति संयुक्त बांधता है? अभी सातवें नरक के नारकी की बात चल रही है। इन सब प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि तिर्यक गति से संयुक्त बांधते हैं, यानी वहां ऑप्शनली मनुष्य गति बनती हो ऐसी बात हो ही नहीं सकती। तथा सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि दोनों जगह अन्य गतियों के बंध का अभाव है। क्या कहते हैं, पहले दूसरे गुणस्थान के लिए सातवें नरक के नारकी के लिए मनुष्य गति बनती ही नहीं है। अन्यत्र हमने देखा था, ऑप्शनल था ना मनुष्य गति, कोई अन्य नारकी जो है या मनुष्य गति बांधे या तिर्यंच गति बांधे। परंतु सातवें नरक के नारकी के लिए ये कंडीशन है कि वो तिर्यक गति ही बांधेगा। कौन? पहले दूसरे गुणस्थान वाला। सातवें नरक का नारकी तीसरे और चौथे गुणस्थान में है तब तक मनुष्य गति को बांधेगा। कोई ऐसा हो सकता है 33 सागर की आयु वाला सातवें नरक का नारकी है, अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो अंतर्मुहूर्त तक तो तिर्यंच गति बांधी, सम्यक तो प्राप्त हुआ तो मनुष्य गति बांध रहा है थ्रू आउट पूरा, अंतिम अंतर्मुहूर्त में फिर मिथ्यात्व में चला जाएगा, बाद में तिर्यंच आयु बांधेगा, वहां तो मनुष्य आयु बनती ही नहीं है, और फिर तिर्यंच गति भी वहां बांधेगा। तो ये 33 सागर तक मनुष्य गति बांधी, उसका क्या होगा? जिस गति का उदय है उस रूप होकर उदय में आएगा, जब उसकी स्थिति पूरी होती है तब की बात। नारकी जीव इनके बंध के स्वामी है, बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। अब उनका सादि अनादि कौन सा बंध होता है उसकी बात करते हैं। 5 ज्ञानावर्णीय, 6 दर्शनावर्णीय, 12 कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्रु लघु उपघात निर्माण और 5 अंतराय, इनका ये सारे ध्रुवबंधी प्रकृतियां ली है। इनका मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है, क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व में कितनी बनती उसकी बात नहीं, ये प्रकृतियां मिथ्यात्व गुणस्थान में कैसे बनती उसकी बात है, क्योंकि ऐसी प्रकृतियां ली कि चारों ही गुणस्थान वाले बांधते हैं, इसलिए यहाँ 12 ही कषाय लिए। मिथ्या दृष्टि कितने बांधता है तो मिथ्यात्व को भी लेंगे और वो अनंतानुबंधी को भी ले लेंगे उसके साथ। प्रश्न हमारा गुणस्थान में मार्गणा नहीं लगाना है, मार्गणा में गुणस्थान लगाना है, और यहाँ सातवें नरक की बात चल रही है। तो पहले ऐसी लिस्ट ली है प्रकृतियों की जो चारों ही गुणस्थान वाले कॉमन बांध सकते हैं। ख्याल है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मिथ्या दृष्टि वाले इतना ही बांधते ये बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो तो मिथ्यात्व को भी बांधेंगे, अनंतानुबंधी को भी बांधेंगे, उसको यहाँ नहीं लिया है क्योंकि हम ये उस लिस्ट की बात कर रहे हैं जो हमने देखी है ना उसकी। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में सादि अनादि ध्रुव अध्रुव चारों प्रकार का बंध है, शेष गुणस्थानों में ध्रुव बंध नहीं है। शेष गुणस्थानों में ध्रुव बंध नहीं है क्योंकि इनके बंध विच्छेद को न करने वाले सासाधन सम्य दृष्टि आदिकों का अभाव है। ध्रुवबंध नहीं है ने अभी जो ऊपर के गुणस्थानों में जाते हैं तो वो तो उनके वो ध्रुवबंध नहीं रहता, वो तो अभी अध्रुव हो गया उनका। शेष प्रकृतियों का बंध सब गुणस्थानों में सादी और अध्रुव होता है क्योंकि वे प्रकृतियां अध्रुव बंदी है। अब और अन्य प्रकृतियों की बात करेंगे यहाँ। निद्दा निद्दा पहला पहला थीण गिद्धि अनंतानुबंधी कोद मान माया लोभ इथिवेद तिरिख गई चौ संठान चौ संगठन तिरिख गई पाव गण पूवी उज्जो व अपसत्थ विहाय गई दुभग दुस्सर अनादिज्य निजा गोताणम को बंधो को अबंधो। ये प्रकृतियाँ ऐसी है कि दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली। तो बंधक कौन है? पहले और दूसरे दोनों। देखो सातवें नरक में निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्थान वृद्धि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ स्त्रीवेद तिर्यक गति चार संस्थान चार सहनन तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी उद्योत अप्रशस्त विहार गति दुर्भग दुस्वर अनादे और नीच गोत्र। इन प्रकृतियों का कौन बंधक कौन अबंधक है? यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा। मिथ्या दृष्टि और शासादन सम्य दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध और उदय पहले कौन सा पहले मिटेगा कौन सा बाद में? साथ में। हाँ, दोनों साथ विच्छिन्न होते हैं क्योंकि शासादन गुणस्थान में ही दोनों का विच्छेद पाया जाता है। अप्रशस्त विहार गति दुर्भग दुस्वर अनादय और नीच गोत्र, इनका पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न होता है। उदय तो चौथे तक चलता है ना ये नारकियों में, और बंध अभी दूसरे में ही उसका विनाश होता है। क्योंकि शासादन सम्य दृष्टि गुणस्थान में बंध के विच्छिन्न हो जाने पर तत्पश्चात असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान में उनके उदय का विच्छेद पाया जाता है। इनके चार ही गुणस्थान है तो चौथे में विच्छेद होता है ऐसा कह देंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये सामान्य में चौथे गुणस्थान में विच्छेद नहीं होता है, नारकियों के लिए कहेंगे तो चलेगा। स्त्यान वृद्धि आदि तीन स्त्रीवेद तिर्यक गति चार संस्थान चार सहनन तिर्यक गति प्राज्ञानुपूर्वी और उद्योत, इनमें उदय किसका और बंध किसका मिटता है पहले? हाँ, इनका तो उदय ही नहीं है तो हम ऐसे कंपैरिजन करते ही करेंगे ही नहीं उसकी है? इनके पूर्व में या पश्चात बंधोदय विच्छेद होने का विचार नहीं है क्योंकि यहाँ इनके उदय का अभाव है। अब सोदय से बनती है कि परोदय से? अनंतानुबंधी कैसे बनती है? हाँ, सोदय परोदय दोनों, जैसे क्रोध के उदय में क्रोध बंधेगा या अन्य के उदय में भी क्रोध बंधेगा उसे। अनंतानुबंधी चतुष्क का सोदय परोदय से बंध होता है क्योंकि वे अध्रुवोदयी है। अध्रुवोदयी ने चारों में से किसी न किसी का उदय चलता है, एक का ही उदय लगातार चलता रहे अंतर्मूर से भी अधिक काल तक ऐसा नहीं हो सकता। हर कषाय की लिमिट मर्यादा अंतर्मूर्त है, बाद में वो कषाय पलटते रहते हैं, उदय उसका बदलता रहता है, क्रोध मान माया लोभ, इसलिए उसको अध्रुवोदयी कहा। अनंतानुबंधी ऐसा सच तो चलता रहेगा, मिथ्या तो गुणस्थान है शासादन है, तो अनंतानुबंधी का उदय तो सतत है, परंतु उसमें से क्रोध या मान या माया या लोभ उसको अध्रुवोदयी कहा। अप्रशस्त विहार गति और दुस्वर का मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय परोदय से बंध होता है, ऐसा क्यों कहा? हाँ, विग्रह गति में और वो मिश्र अवस्था में विहार गति का उदय नहीं होता, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर परघात और विहार गति का उदय चालू होता है। यहाँ दूसरे की बात चल रही है। हाँ, दुस्वर का उदय कब होगा? भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर, इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थान में ही अपर्याप्त अवस्था पॉसिबल है। अभी ये कौन सा सातवां नरक की बात चल रही है, इसलिए मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में जब इनका उदय नहीं है उस समय भी इनका बंध है तो तब उसको कहेंगे परोदय से बनती है। पर्याप्त अवस्था में इनका उदय है और बंध भी है तब कहेंगे स्वोदय से बनती है। इसलिए मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में स्वोदय और परोदय दोनों कहे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थाएं पाई जाती है। क्योंकि अपर्याप्त काल में इनका उदय नहीं रहता। सासादन गुणस्थान में स्वोदय से ही इनका बंध होता है, क्योंकि इस गुणस्थान का यहाँ अपर्याप्त काल में अभाव है। यहाँ इन्हें नरक में, सासादन वाले नार की किसी के भी पहले नरक से लेकर नीचे तक, वो तो मरकर नरक में जाते ही नहीं ना सासादन वाले, तो सासादन अवस्था है, सासादन गुणस्थान है और अपर्याप्त अवस्था है नारकी की, ऐसे बन ही नहीं सकता। नहीं समझे? अवस्था नहीं बनती क्योंकि हाँ मरकर वहां नहीं आता, अपर्याप्त काल या विग्रह गति उसमें उस गुणस्थान में पॉसिबल नहीं है। दुर्भग अनादेय और नीच गोत्र, इनका स्वोदय से ही बंध होता है क्योंकि ये प्रकृतियां ध्रुवोदयी है। नारकियों के लिए इसको ध्रुवोदयी कहा। अन्यत्र भी दुर्भग या सुभग का उदय तो विग्रह गति वाले को भी होता है, परंतु यहाँ नारकियों के एकमात्र वो अप्रशस्त का ही उदय है, इसलिए उसको दुर्भग ही कहा, यहाँ ध्रुवोदयी कहा। स्त्यान वृद्धि आदि तीन, ये ध्रुवोदयी है क्या, कैसी है? हाँ उदय नहीं है नारकियों में। स्त्री वेद, तिर्यक गति, चार संस्थान, चार सहनन, इस के ऊपर बिंदी लगाना बराबर, संस्थान में तिर्यक गति, प्राज्ञानुपुरी और उद्योत, इनका परोदय से ही बंद होता है, यानी इनके उदय का अभाव है और फिर भी बंद है तो कहते हैं परोदय से बंद होता है, इसका कारण स्वभाव ही है। पयोदय हो गया, परोदय करना, हाँ अच्छा है। अब ये ध्रुवबंदी है क्या कैसे, उसकी बात करेंगे। स्त्यान वृद्धि अधिक तीन, अनंतानुबंधी चतुष्क, तिर्यक गति, तिर्यक प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र, इनका निरंतर बंध होता है क्योंकि यहाँ वे ध्रुवबंदी है। ये कौन सी लिस्ट हम देख रहे हैं, मिथ्या तो सासादन वाली, बराबर। स्त्यान वृद्धि तो अन्य के लिए भी ध्रुवबंदी होती है, दर्शनावन के नौ की, जब तक विच्छित नहीं तब तक ध्रुवबंदी, अनंतानुबंधी के बारे में भी वही बात है। अब यहाँ ये सातवें नरक वाले के लिए तिर्य गति और तिर्य प्राज्ञानुपूर्वी का ही बंध होगा निरंतर, मिथ्यात्व गुणस्थान है ना, मिथ्यात्व सासादन, नीच गोत्र भी उसके साथ तिर्य के गति के साथ नीच गोत्र का बंध होता है, ये ध्रुवबंदी है। शेष प्रकृतियों का सांतर बंध होता है क्योंकि एक समय के द्वारा भी इनका बंध विच्छेद पाया जाता है। अब प्रत्ययों की बात करेंगे। प्रत्ययों की प्ररूपणा चतुस्थानिक प्रकृतियों के समान है। चतुस्थानिक का अर्थ याद है क्या, हमने देखा जो ये प्रकृतियां चारों ही गुणस्थानों में बनती है उसको कहा चतुस्थानिक प्रकृतियां। तो उन प्रकृतियों के लिए जो प्रत्यय कारणभूत है वे ही प्रत्यय इनके लिए भी कारणभूत है। जैसे मिथ्या तो गुणस्थान में कितने प्रत्यय कहेंगे, तो मूल प्रत्यय चार है और फिर उत्तर जितने हैं प्रत्यय उसको कहेंगे, तो प्रत्यय तो वही के वही है। इन सब प्रकृतियों को तिर्यक गति से संयुक्त बांधते हैं। नारकी जीवन के बंध के स्वामी हैं। बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। स्त्यानुवृद्धि आदि तीन और अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में चारों प्रकार का बंध होता है क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ये हमने पहले ध्रुवबंधी की लिस्ट देखी थी 47 की, तो उनका सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव चारों ही प्रकार का बंध मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में पाया जाता है। सासादन गुणस्थान में सादि व अध्रुव होता है और शेष प्रकृतियों का बंध सर्वत्र सादि व अध्रुव होता है। जो अध्रुव बंदी होते हैं ना, तो वो तो सादि होती है क्योंकि प्रतिपक्ष वाली होती है, जो कुछ अन्य अन्य कारण बनते हैं उसके लिए, क्योंकि वे अध्रुव बंदी है। हमने ध्रुव बंदी 47 देखी थी और अध्रुव बंदी 73 देखी थी, उसमें अप्रतिपक्ष वाली 11 देखी थी और प्रतिपक्ष वाली 62 देखी थी। वो 62 में 51 तो नाम कर्म की थी और अन्य जो तीन आघाती है उसकी आगा थी ने मोहनीय की सात देखी थी, वेदिनी की दो और गोत्र की दो। आयु जो है वो अप्रतिपक्ष वाले में देखी थी हमने। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे। मिच्छत्त नऊं से वेद तिरिखाऊ हुंड संठान असंपत्त सेवट्ठ शरीर संगण नामानम को बंधो को अबंधो। ये सातवें नरक के लिए ये सूत्र बनाया है। तो ये प्रकृतियां कैसी है जो पहले गुणस्थान में बंध की विचित सातवें नरक में ये तिरिखाऊ पहले में ही क्यों बंध विच्छित्ति होती है? तिरियन चायु को क्यों लिया इसमें? हाँ, एकमात्र तिरियन चायु का ही बंध होता है और वो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है, इसलिए, क्योंकि दूसरे वाला भी आयु तो बांध सकता है अन्यत्र, दूसरे गुणस्थान वाला तिरियन चायु बांध सकता है, परंतु सातवें नरक के लिए तिरियन चायु के लिए एकमात्र नियम है मिथ्यात्व में ही जाकर बांधे, सासादन में भी नहीं बांधेगा वो। सातवें नरक से जब बाहर निकलता है तो चौथे में तो कोई नहीं निकल सकता, सासादन वाला भी नहीं निकलेगा। मिथ्यात्व में जाकर आयु बांध कर फिर मरण होता है ना उसका, तो सातवें नरक में से बाहर पड़ने का एकमात्र एक पहला गुण स्थान है। आपका प्रश्न है आयु बांधने के बाद सासादन में आने के लिए औपशमिक समय तो प्राप्त करना पड़ेगा? नहीं, वो तो उसका हमने देखा था सातवें नरक के नारकी की अधिकाधिक सम्यक की उसका काल लिमिट हमने देखी थी ना, उसके बाद उसके ऐसे परिणाम नहीं होंगे, कहीं आपके पढ़ने में आया हो तो। हाँ, क्योंकि एक गुण मिथ्यात्व गुण स्थान में ही वो आयु भी बांधता है और उसके बाद वो उसका मरण भी मिथ्यात्व गुण स्थान में होता है। देखो 6 महीने के लिमिट वो तो पहली टाइम जो अवसर अपसर इसको जो अपकर्षण काल आते हैं ना अवसर उसकी बात है, तो उसमें भी 8 अपकर्षण काल होते हैं। 6 महीने में 8 पड़ेंगे 8। हाँ, उसके वर्थ मंत्रण होते हैं। 6 महीने पहले पहला अवसर आता है देव और नारक, पहला अवसर 6 महीने के स्टार्टिंग पॉइंट में पहला अंतर्मुहूर्त उसका, तब नहीं बंधेगी तो और उसके आगे, जैसे मनुष्यों में हम पूरे आयु के त्रिभाग करते हैं, यहाँ 6 महीने के त्रिभाग करना। हाँ, 6 महीने का त्रिभाग नहीं, यानी 6 महीने बाकी है तब पहला अवसर, अन्य 7 अवसर है वो त्रिभाग में करना, यानी 6 महीने से 2/3 गया, यानी 4 महीने और बीत गए और 2 ही महीने बाकी, तो दूसरा अवसर आता है आयुबंध का। ये कौन बंधक कौन अबंधक ये हमने अर्थ पढ़ा कि नहीं? फिर पढ़ते। सातवें नरक में मिथ्यात्व नपुसक वे तिर्यक आयु हुंड संस्थान, ये स के ऊपर बिंदी और आ के ऊपर 2 मात्रा और असंप्राप्त सुपाटिका शरीर सहनन, प्रकृतियों का कौन बंधक कौन अबंधक है यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा, मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। 6 नरक के नारकियों में हमने जो देखे थे वहां तो 4 ही प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति देखी थी मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिथ्यात्व हुंडक संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका सहनन और नपुसक वेद। हाँ, 59 में एक क्वेश्चन है, चलो अच्छा है, सब मिलकर प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा, मिथ्या दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष अबंधक है। इस सूत्र का व्याख्यान नारक सामान्य की नारक सामान्य ने सामान्यतः जो नारकियों की प्ररूपणा देखी थी उसकी एक स्थानिक प्रकृतियों के व्याख्यान के समान है। एक स्थानिक प्रकृति का अर्थ क्या होता है? अकेले एक गुणस्थान में, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही जिसका बंध है उसको कहेंगे एक स्थानिक। हमने अभी अभी चतुस्थानिक द्विस्थानिक देखे थे ना, वैसा एक स्थानिक विशेषित। किसमें? व्याख्यान इसका उसका जो अभी हमने विस्तार देखा था, विशेष उसका विस्तार से कथन, उसको व्याख्यान कहेंगे। प्रवचन के तो अलग अलग अर्थ है ना, प्रवचन पूरे आगम को भी प्रवचन कहते हैं, एक सूत्र को भी प्रवचन कहेंगे। जैसे अभी अभी तो हमने देखा ना, वहाँ तो चौथे गुण यानी देशव्रती को, महाव्रती को, सबको सम्यक दृष्टि को भी प्रवचन कहा था। प्रवचन शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है। अभी हमने तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण में देखा था प्रवचन भक्ति शब्द आया था ना, वहां तो प्रवचन किसको कहा? ये सम्यक दृष्टियों को प्रवचन कहा, चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान वालों को। अच्छा, उसका कोई व्याख्यान होगा? अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो प्रवचन तो ये शास्त्र का ही विस्तार से कथन करते हैं इसको, इसलिए उसको प्रवचन कहते हैं।
वास्तव में प्रवचन का अर्थ तो जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, प्र यानी विशेष वचन जिनके हैं उसको प्रवचन कहेंगे, लेकिन अभी बात आते आते
ये आज किनका प्रवचन है
ऐसा भी होता है। एक्चुअली विशेष जो बात है जिनेंद्र भगवान की वही तो बात बताई जाती है।
व्याख्यान विशेष विवेचन, विशेष स्पष्टीकरण। जैसे हम भी यहाँ सीखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो कभी औरों को बताने के लिए कभी प्रवचन कहेंगे, पर हमेशा तो हम कहेंगे ये क्लास चलती है। तो जब क्लास कहते तो लोग फी पूछते हैं, कितनी फी लेते हैं? हाँ, स्वाध्याय कहते हैं हम, पर फिर भी उनको ये सब कभी कभी प्रश्न पड़ता है ना, अरे क्लास क्लास है तो अपनी फी कितनी है? ये क्या है, जो रूढ़ी में शब्द जैसे अन्य मति में स्वाध्याय, स्वाध्याय तो उसका अलग ही कुछ अर्थ है, वो समझते हैं वो पांडुरंग शास्त्री वगैरह, वो तो स्वाध्याय, वो तो सत्संग, ये अलग अलग कुछ अर्थ में प्रचलित होता है। अब 61 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे। मनुष्य गई पावगान पूवी उच्चा गोदानम को बंधो को अबंधो। ये सातवें नरक की बात चल रही हो, सातवें नरक में मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी और उच्च गोत्र प्रकृतियों का कौन बंधक और कौन अबंधक है, कौन होगा? हाँ, तीसरा और चौथा। सम्मा मिच्छा इट्ठी असंजत सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा। सम्यक मिथ्या दृष्टि श करना बरोबर दृष्टि वाला, और असंयत सम्यक दृष्टि बंधक है, ये बंधक है, शेष गुणस्थानवर्ती अबंधक है, इसका अर्थ कहते हैं। इसमें पहले बंधे की विच्छित्ति के उदय की विच्छित्ति आदि इसका तो सवाल ही नहीं आता ना। हाँ, बंध से उदय पूर्व में विच्छिन्न होता है या पश्चात, यह विचार यहाँ नहीं है क्योंकि इनका यहाँ उदय नहीं है। इनका परोदय से ही बंध होता है क्योंकि नरक गति में इनके उदय का अभाव है। यह मनुष्य गति प्रायज्ञान पूरी उच्च गोत्र, इनका उदय यहाँ रहता ही नहीं है। इनका यहाँ बंध निरंतर होता है क्योंकि एक समय से इनके बंध का विश्राम नहीं होता, ये लगातार अनेक समयों तक बनती है, तो एक समय में ही हो जाए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी और उच्च गोत्र ही बंधेगा तीसरे चौथे वालों के, क्योंकि अन्य प्रकृतियों के बंध की विच्छित्ति हुई है, इसके कोई प्रतिपक्ष भी नहीं रहा यहाँ। इनके प्रत्यय चतुस्थानिक प्रकृतियों के प्रत्ययों के समान है। सम्यक मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। यहाँ इनके बंध के नारकी स्वामी हैं। बंधाध्वान और बंध विनिष्ट स्थान सुगम है। बंध की मर्यादा कहाँ से कहाँ तक है? मनुष्य गति का बंद करते हैं नारकी, तीसरा और चौथा, सातवें नरक के नारकी की बात चल रही है। ऊपर के नरकों में कहेंगे तो पहले से भी एक से चार तक कोई भी उसको बांध सकता है, ये सातवें की स्पेशल बात हो रही है। तो सातवें नरक के मिथ्यादृष्टि और सासाधन वाले मनुष्य गति को बांधेंगे ही नहीं, तीन इंच गति का ही बंद करेंगे। तो तिरंज गति के साथ उसी की अनुपूर्वी बंधेगी और नीच गोत्र ही बंधेगा। सादी व अध्रुव बंध होता है क्योंकि वे अध्रुव बंधी है, ये प्रकृतियां जो है अध्रुव बंधी है। अथवा सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टियों के मुक्ति गमन में नियम होने से भी सादी व अध्रुव बंध होता है। सासाधन के ऊपर हम सादी और अध्रुव कहते हैं क्योंकि वो तो नियम से मोक्ष जाने वाले जीव हैं। यहां तक हमने नरक गति की बात की, मार्गणा के प्रकरण में गति मार्गणा में नरक गति की बात हो गई। अब तिर्यंच गति की बात उठाएंगे। तिर्यंच गति में बंद करने वाले जीव अभी देखेंगे, तो उसमें गुणस्थान कितने देखेंगे अभी हम? पांच। हाँ, एक से पांच। वो एक से पांच गुणस्थान कौन से तिर्यंचों में हो गए? हाँ, संगी पंचेंद्रिय में होगी, बराबर। हाँ, अब यहाँ पढ़ेंगे हम तिरिक्ख गदिये तिरिक्खा पंचेंद्रिय तिरिक्खा पंचेंद्रिय तिरिक्ख पज्जत्ता पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनी निसु, इनमें कौन से बंध होते उसकी बात चल रही है। यानी ये सारे संगी पंचेंद्रिय है ना, कौन कौन लिए? तिर्यंच यानी तिर्यंच इन जनरल, सामान्य से बात करेंगे तो भी उसके ये आलाप के भेद है, कथन के भेद है, या पंचेंद्रिय तिर्यंच कहेंगे। संगी असंगी का भेद कई बिना भी कहेंगे तो भी जो एप्लीकेबल है संगी के लिए वो हम कहेंगे उसमें। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त यानी अपर्याप्तों को छोड़कर अकेले पर्याप्तों की बात करेंगे, क्योंकि ये बंध तो पर्याप्तों के ही, वैसे अपर्याप्तों में भी होगा परंतु उनकी अपेक्षा चल रही बात। और पंचेंद्रिय तिर्यंच जोनिनी, इनमें अब आगे लिस्ट पढ़ते हैं। पंच नानावर्णीय छ दंशनावर्णीय सादा साद यानी साता साता अठ कसाय, पांचवे गुणस्थान तक ले जाना है ना एक साथ, इसलिए आठ कसाय लिए। पुरी स्वेद हस्सरदि अरदि सोग भय दुगुंछा देवगई पंचेंद्रिय जादि वेयुवीय तेजा कम्मय शरीर समचौरस संठान वेयुवीय शरीर अंगोवंग वर्ण गंधरस फास देवगति पावगान पूवी अर गुरुव लघुव लहुव उवघाद परघाद उत्साह पसत्त विहाय गई तस बादर पज्जत्त पत्ते शरीर थिरा थिर सुह सुह सुभग सुसर आदेज जसकित्ति अजसकित्ति निमिण उच्चागोद पंचंतरायणम को बंधो को अबंधो। फिर इसकी हिंदी में पढ़ते हैं। तिर्यंच गति में तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनियों में ये किसमें ही वो बात बताई, अब कौन सी प्रकृति उनके नाम बता रहे। पांच ज्ञानावरण छह दर्शनावरण साता साता वेदनीय आठ कषाय पुरुष वेद हास्यरति अरति शोक भय जुगुप्सा देवगति पंचेंद्रिय जाति वैक्रिय तेजस कारमान शरीर समचतुरस्र संस्थान वैक्रिय शरीर अंगोपांग वर्ण गंधरस स्पर्श देवगति प्राज्ञान पूर्वी अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर आदेय यशकीर्ति ऐशकीर्ति निर्माण उच्च गोत्र और पांच अंतराय। इनका कौन बंधक है कौन अबंधक है, ऐसी लिस्ट ली है जो पांचवें गुणस्थान के जीवों को बनती है और वहां उसकी विच्छित्ति कहेंगे हम। क्योंकि उसमें पांच ही गुणस्थान होते हैं। यह सूत्र सुगम है। तो उसके जवाब में लिखते हैं, मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव संजदा संजदा बंधा एदे बंधा अबंधानत्थी। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक बंधक है, ये बंधक है अबंधक नहीं है। इसमें से जो जो प्रकृतियां छोड़ी है, कुछ छोड़ी भी है ना कि नहीं छोड़ी कोई, जैसे मिथ्यात्व को छोड़ा है, अन्य आठ कषायों को छोड़ा है, जो जो छोड़ा है उसको वहां पर बताएंगे। ये ऐसी ली है कि जो पांचवे तक भी बन सकती है। पहले दूसरे वाले में जो बंध विच्छित्ति होती है उसकी बाद में करेंगे, ये लास्ट लिमिट पहले ली। पांचवे में बंध विच्छित्ति होने वाले प्रकृति यहाँ लिए। इसलिए ये आयु को भी नहीं लिया, देवगति देवगति प्रायज्ञान पूर्वी को लिया, देवायु को यहाँ नहीं लिया, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि मिथ्यात्व से लेकर पांचवे तक बनती है करके, क्योंकि तीसरे वाले को तो नहीं बनती है। इसलिए उसकी बाद में स्पेशली अलग से करेंगे। यह सूत्र सुगम है। और यहाँ तो चारों ही आयु नीचे के गुणस्थानों में तो चारों ही आयु का बंध होगा पहले गुणस्थान में, तो आयु की बाद में उठाएंगे वो। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, देवगति वैकिरेक शरीर अंगोपांग देवगति प्रायज्ञानुपूर्वी और उच्च गोत्र। अभी बंद पहले के उदय पहले हटेगा उसकी बात पूछ रहे हैं। इनका तीर्यंचों में उदय न होने से बंद उदय और उनकी विच्छित्ति की पूर्वापरता का विचार नहीं है। पूर्व और अपर, अपर यानी उससे अलग उल्टा, यानी पहले और पश्चात, पूर्व और पश्चात। अपर का शब्द है जो हमने शब्द यूज किया उसका उल्टा अर्थ वाला। जैसे हम अभी भूगोल के चार्ट बना रहे या विधेय क्षेत्र का वर्णन चल रहा है, तो उसमें मैं पूर्व अपर विधेय कहते हैं, तो पूर्व का अर्थ पूर्व दिशा और अपर का अर्थ पश्चिम दिशा। अब यहाँ जो पूर्व अपर पूर्व यानी पहले और अपर यानी पश्चात, इसलिए जहां जो योग्य अर्थ है वहां उसको निकालना है। उनकी विच्छित्ति की पूर्वापरता यानी पहले कौन और पश्चात कौन, इसका विचार यहाँ नहीं है, क्योंकि इनका यहाँ उदय ही नहीं पाया जाता। देवगति वगैरह की संबंध में जो प्रकृतियां हैं उसकी, क्योंकि सत्व और असत्व के सन्निकर्ष का विरोध है। सत्व यानी उसका प्रेजेंस अस्ति और असत्व यानी नास्ति। सन्निकर्ष यानी उनका एकत्रित रहना, इन कॉन्टेक्ट। सन्निकर्ष शब्द पहले सुना था कभी किसमें? हाँ, उसमें जो इंद्रिय ज्ञान के संबंध में हमने देखा था, चक्षु और मन को छोड़कर अन्य जो इंद्रियों के द्वारा हमारा जानने का कार्य चलता है, वहाँ विषय और इंद्रिय इनकी सन्निकर्षता होना जरूरी है। यानी वे इन कांटेक्ट आएंगे तो ही उसका ज्ञान होता है। जो स्पर्श के हम टच करके, टच यानी उसको जो हम स्पर्श कहते हैं लौकिक में जिसको, तो वो स्पर्शनेन्द्रिय के नजदीक आवे तो उसका ज्ञान होता है। चक्षु में ऐसा नहीं होगा, उल्टा तो वो तो दूर से ही देखेंगे। यहाँ टच करेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय का ज्ञान होगा, क्योंकि जो चक्षु इंद्रिय है वहां स्पर्शन इंद्रिय भी है कि नहीं है? अन्य इंद्रियों के यहाँ भी स्पर्शन इंद्रिय तो सर्वत्र है। जैसे जो जीवा इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय, तो रसनेन्द्रिय में खाली खट्टा मीठा ही समझता है क्या, गर्म ठंडा गर्म भी समझता है? तो ठंडा और गर्म समझ रहा है वो रसनेन्द्रिय के द्वारा समझ रहा है कि स्पर्शनेन्द्रिय के द्वारा? है ना, वहां वो भी इंद्रिय है। तो इसको कहते हैं सन्निकर्ष होना, टू कम इन कॉन्टेक्ट, उसको सन्निकर्ष कहें। हाँ, ऐसा नहीं विचार किया ऐसा विचार नहीं किया, अब खाते समय ऐसा विचार करना है एंड जिसको गरम गरम खाने की चाह उसको स्पर्शन इंद्रिय का विषय संबंधी चल रहा है उसका, और जिसको टेस्ट में जो चल रहा है ना, ये खट्टा है कि तीखा है कि मीठा है का जो कुछ है, वो तो रसने इंद्रिय के विषय का लोलुपी, हमने प्रमाद के भेद देखे थे, वैसा अपने आप पर लगा लेना, अप्लाई करना क्या चल रहा है।
देखो एक मजे की बात बोलता हूँ, हमारे पहचान के ऐसे एक जिनके अभी अभी लड़का हो के एक दो साल हो गया होगा, तो वो बिल्कुल रसोई घर में ऐसी जगह बैठते हैं कि बिल्कुल ओवन है से हाथ में, तो
माइक्रोवेव
तो एक कटोरी में दाल लेंगे और दाल में एक दो कोर खिलाया तो कटोरी वो माइक्रोवेव में डालेंगे, अंदर की बाहर निकालेंगे, फिर उसको गरम गरम जरा मतलब थोड़ा ठंडा होगा नहीं चलेगा। अभी वो बच्चे को खाना भी खाने का मालूम नहीं है, एक साल का होगा डेढ़ साल का होगा, उसके अभी से इतने नाटक माँ बाप कराते हैं।
तो वो आगे माँ बाप ही सिखाते ना, ये कुगुरु कहाँ ढूंढना नहीं पड़ता।
वो चावल भी दो दो मिनट में अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऐसा क्या। लेकिन लोगों के आजकल कहाँ इंद्रियों के विषयों में इतने फंसने की नए नए तरीके निकाल रहे हैं, हमें आश्चर्य हो गया कि भाई क्या है।
सारे खराब है, उसकी आदतें भी बिगाड़ रहे, सब कुछ ऐसा होता है, विचार कौन करता है। ऐसे होते जब हम ठंडा गर्म तो स्पर्श में घटाएंगे, चिकना है क्या, हाँ वो स्पर्शन इंद्रिय का ही चल रहा है वहाँ, ये बहुत सॉफ्ट है नहीं, ये बहुत अच्छा है, सॉफ्ट नहीं है, ये जैसे चरबरा है, जो कुछ चलता है उसमें चरबरा तो टेस्ट हो गई, ये स्निग्ध है या रुक्ष है, ये जो हम कहेंगे ना उसमें, ये तो जो जो स्पर्श गुण की पर्याय है उस संबंधी जो कुछ वहाँ ज्ञान चल रहा है, उसके विचार चल रहे, वो तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय चल रहा है वहाँ। किसी को वो नरम रोटी पसंद है, किसी को कड़क रोटी पसंद है, तो उसमें भी वो उसका कड़क वाला जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। चलो जितना हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो मेरी भाभी है, आप तो दिन भर आध्यात्मिक ही बातें ऐसी चलती रहती है, अब क्या हम क्या करें, हमको दूसरा कुछ आता ही नहीं। ये सन्निकर्ष से बात निकली, सभी नीचे से पांचवी लाइन में थे अभी, विरोध है शेष प्रकृतियों में भी यह विचार नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप से इनके बंधोदय विच्छेद का अभाव है। ये अन्य जो कुछ है ना, यथार्थ में बंध उदय की विच्छित्ति तो होती नहीं, क्योंकि हमने देखा भले उसका उदय चलता रहे फिर भी उसके विच्छित्त तो एक्चुअली वहां नहीं होती, फिर भी अभी तिर्यंश गति की बात है तो पांचवें गुणस्थान तक उसका उदय चल रहा है, इतना ही कहेंगे हम, कहने भी आएगा कि उसकी विच्छित्ति होती है, परंतु यथार्थ में नहीं होती वहां पर। पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, वैक्रेक तेजस्व कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, अग्रु लघु स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ निर्माण और पांच अंतराय, इनका सोदय बंद होता है क्योंकि वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। वैक्रिक लिया ऊपर क्या है, ध्रुवोदय प्रकृतियां, औदारिक चाहिए ना। देवेंद्र भाई कहते हैं वैकृत शरीर की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी, सोदय बंद होता है क्योंकि ध्रुव दे ही नहीं। सोदय कब कहेंगे? वैकेक के उदय में वैकेक का बंद। पण पांचवे गुण स्थान में औदारिक का बंद नहीं हो रहा है, वैकृत का हो रहा है। हाँ हाँ, ध्रुवोदयी प्रकृतियां है कहा, उसमें भी मूल प्राकृत में भी उसने उन्होंने वेयुव्य लिखा है। देखो पंचनानावर्णी चतुर्दंशना में वेयुव्य तेजा कमय शरीर वर्ण गंधर से पास वगैरह वगैरह। सोदो बंदो धुवोदयतादो, ये अपने ख्याल में नहीं आया कौन सी बात बताना चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे, देखो सोदय से औदारिक वहां लिखेंगे तो औदारिक के उदय में वो बंद तो वैकिरिक रहा है, उसको सोदय कह सकेंगे। वैक्रेक का बंद सोदय में होता है, इसी बात चल रही है उनकी। देखो पांच ज्ञानावरण चार दशा वैक्रेक तेजस कारमान नहीं, उसकी तो बात हो गई। देखिए पहले से तक पांचवे तक बंधक है, ये बात हुई ना। बंधक की बात चल रही है क्योंकि वैकृत तेजस कारमान का ही बंद की बात है, औदारिक के बंद की बात ही नहीं है। तो वैकृत का बंद स्वोदय में होता है ऐसा उन्होंने कहा। एक्चुअली वैकृत तेजस कारमान ऐसा जो एक साथ लिखा है, केवल तेजस कारमान चाहिए था, औदारिक डालेंगे तो भी वो स्वोदय से बंद वैसा नहीं सिद्ध होगा। हाँ कुछ नहीं, वही तो मैं कह रही, अकेला तेजस कारमान अगर लिखेंगे हम, हाँ एग्जिस्टिंग औदारिक शरीर है और पांचवे गुणस्थान में बांध रहे वैकृत शरीर को, क्योंकि यहाँ औदारिक शब्द डालने से भी नहीं चलेगा। वो ग्रुप पे आखा के आखा ग्रुप उन्होंने लिया, हाँ ये इसको वैकृत को निकालना, ये पेंसिल से करो जो कुछ करना है। यहाँ कुछ करेक्शन है क्या? क्योंकि उसका अर्थ बदल जाता है ना, क्योंकि वैकरे का वो लिस्ट वैसे के वैसी ली ना वहां से उन्होंने। फिर पढ़ती मैं, अभी हम वैकिरे को टाल कर पढ़ेंगे। पांच ज्ञानावरण चार दर्शनावरण तेजस्व कारमान शरीर वर्ण गंध रस स्पर्श अग्रु लघु स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ निर्माण और पांच अंतराय, इनका सोदय बंद होता है क्योंकि ये ध्रुव दिए प्रकृतियां हैं। ये तो अभी ठीक बैठता है ना यहाँ पर। अब कहते निद्रा प्रचला सातावा असाता वेदनीय आठ कषाय पुरुष वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा समचतुरस्र संस्थान प्रशस्त विहायो गति। त का ग करना, तति हुआ है ना, गति करना, प्रशस्त विहायो गति और सुस्वर। इनका सब गुण स्थानों में स्वोदय परोदय बंद होता है। अब ये नरक की बात भूल जाओ, अभी यह तिर्यंच गति की बात चल रही है, क्योंकि बहुत हम नरक में घूमे ना, तो वही बात याद आती है। तो निद्रा और प्रचला का बंध निद्रा और प्रचला के उदय में भी हो सकता है और उदय के अभाव में भी हो सकता है, इसलिए वो सोदय परोदय दोनों का है। साता असाता में भी ऐसा ही है, उदय साता का हो तो साता असाता दोनों में से कोई भी बंधे, और असाता का उदय में भी दोनों में से कोई बंधे। आठ कषाय में भी क्रोध मान माया लोक पर घटाना ही है। पुरुष वेद का उसमें भी सोदय परोदय। अब ये सोदय परोदय के लिए एक विशेष बात बता रहे हैं, क्योंकि किन में ये बात चल रही है तो सामान्य में तिर्यंचों में, तिर्यंच पर्याप्तों में, फिर योनिमति में भी लिया था, तो इसलिए यहाँ एक शब्द एक वाक्य और डाला। विशेष इतना है कि योनिमति तिर्यंचों में पुरुष वेद का बंध परोदय से होता है, क्योंकि योनिमति का अर्थ ही होता है कि स्त्री वेद का उदय चल रहा है। स्त्री वेद के उदय वाले तिर्यंचों को योनिमति कहा। मनुष्य में भी ऐसे कहते हैं ना, मनुष्यनी कहते हैं, वहां भी द्रव्य से पुरुष है और भाव वेद स्त्री वेद का उदय चल रहा है, भाव वेद का ही उसकी अपेक्षा ये योनिमति या मनुष्यनी कहते हैं। तो उनमें तो उदय तो स्त्री वेद का है और बंध पुरुष वेद का चल रहा है, तो हम कहेंगे ये परोदय से बंध हो रहा है। उपघात का बंध, अब उपघात का स्वोदय से होगा के परोदय से होगा? उपघात बनता तो निरंतर यानी ध्रुव बंदी है, परंतु वो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आदि जहां वो विग्रह गति में वो नहीं पाया जाता, तो वहां कहेंगे स्वोदय परोदय दोनों। उपघात का बंध, अब तिर्यंच है तो उसमें विग्रह गति या अपर्याप्त अवस्था में गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा तो किसी भी गति में नहीं होता, और पांचवे के आगे भी कोई विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते, इसलिए यहाँ कौन कौन लिए? उपघात का बंध, मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के, तिर्यंचों की बात है ना, स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि विग्रह गति में उपघात का उदय नहीं होता, तो विग्रह गति में उदय नहीं है और बंद हो रहा है तो हम कहेंगे परोदय से बनता है। पर्याप्त अवस्था में इन्हीं गुणस्थानों में उदय होता है और बंद भी होता है, तब कहेंगे स्वोदय से होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता संयतों के स्वोदय ही बंद है, क्योंकि वहां तो बंद निरंतर चल रहा है ना, ये उदय निरंतर चल रहा है उनका, पर्याप्त गुणस्थान है वे, अपर्याप्त अवस्था उसमें होती नहीं है, तो उपघात का उदय तो रहेगा ही और बंध भी ध्रुवबंदी होने से चलता रहेगा, स्वोदय ही बंध होता है। क्यों? क्योंकि उनके अपर्याप्त काल का अभाव है। अब परघात, उच्छ्वास और प्रत्यक्ष शरीर, इनका बंध मिथ्या दृष्टि, सासादन सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि इन प्रकृतियों का अपर्याप्त काल में उदय नहीं होता। शेष दो गुणस्थानों में स्वोदय बंद होता है। इसमें भी ऐसे ही समझना, परघात का उदय तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर होता है, उच्छ्वास का उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर होता है, प्रत्येक शरीर कर्म वो तो भी वो विग्रह गति के बाद तब उसका उदय शुरू हो जाता है। विशेषता यह है कि योनिमतियों में असंयत सम्यक दृष्टि जीव इन्हें स्वोदय से ही बांधता है। योनिमति जो तिर्यंच है उनमें असंयत सम्यक दृष्टियों में अपर्याप्त अवस्था होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। योनिमति में तिर्यंच योनि में, क्योंकि स्त्री पर्याय है, स्त्री वेद का उदय है, असंयत यानी अपर्याप्त अवस्था कब हुई? कहीं से मरकर आया, तो मरकर आया तो पुरुष वेद सही जन्म लेगा, तो योनिमति में नहीं जन्म लेगा। पहले भव का कोई तिर्यंच में आता है तो कौन आता है? हाँ पुरुष मनुष्य ही आएगा ना, आएगा तो अन्य कहीं से तिर्यंक में सम्यक दृष्टि उत्पन्न ही नहीं होगा। तिर्यंक सम्यक दृष्टि भी देव में चला जाएगा, नार की सम्यक दृष्टि मनुष्य होगा, देव सम्यक दृष्टि भी मनुष्य होगा। तो तिर्यंक में सम्यक दृष्टि आने वाला कहाँ से है? मनुष्य, वो भी क्षायिक, तो वो तो पुरुष वेद वाला ही आएगा उसमें। सम्यक दृष्टि बाद में नरक को छोड़कर उसके एकमात्र पुरुष वेद ही पाया जाता है। इसलिए योनिमति जो है वो जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही है, ये सासाधन भी जो कुछ होगा। इसलिए क्या कहा, योनिमतियों में असंयत सम्य दृष्टि जीव इन्हें स्वोदय से ही बांधता है, क्योंकि योनिमतियों के अपर्याप्त काल में असंयत सम्य दृष्टि गुणस्थान का अभाव है। ये क्यों, ये विचार करेंगे ना तो अपने ख्याल में आता है। त्रस, बादर, पर्याप्त और पंचेंद्रिय जाति इनको मिथ्यादृष्टि जीव स्वोदय परोदय से बांधता है, क्योंकि यहाँ इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का उदय संभव है। तिर्यंच सामान्य की बात पहली उठाई थी, अकेले पंचेंद्रियों की बात नहीं है, क्योंकि बताते समय उन्होंने तिर्यंच ऐसा भी लिखा था। तो तिर्यंचों में तो सभी तिर्यंच आ जाए, अन्य जातियों का भी उदय होगा वहाँ। पंचेंद्रिय जाति बांध तो रहे हैं, परंतु मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जाति तक का उदय होगा। और यहाँ बंध, हम पंचेंद्रिय जाति के बंध की बात कर रहे हैं, तो स्वोदय से भी बंधेगी और परोदय से भी बंधेगी। और शेष गुणस्थान वर्ती स्वोदय से ही बांधते हैं, क्योंकि वहाँ एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, तीन्द्रीय, चतुरिंद्रीय जीवों को अन्य गुणस्थान नहीं हो गए, क्योंकि उन गुणस्थानों में प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदय का अभाव है। दूसरी भाषा में एकेंद्रियों से असन्नी तक के जीवों को दूसरा, तीसरा आदि गुणस्थान नहीं हो गए। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमतियों में स्वोदय से ही सब गुणस्थानों में बंद होता है, क्योंकि उनके एकमात्र पंचेंद्रिय जाति का ही उदय चल रहा है। तो ये जो परोदय से बंद होता है वो कहाँ, तिर्यंच सामान्य की बात की थी उसमें पॉसिबल है, उसमें वो घटित होता है। जब उन्होंने बता दिया कि तिर्यंच है ये, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त है या योनिमति है जो कुछ है, तो उसमें तो वो स्वोदय से ही बंद हो रहा है, क्योंकि इनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदय का अभाव है। विशेषता यह है कि पंचेंद्रिय तिर्यंचों में मिथ्यादृष्टियों के पर्याप्त प्रकृति का स्वोदय परोदय बंद होता है। क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसा ही बता दिया पंचेंद्रिय तिर्यंच है, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच ये सामान्य कथन हुआ। पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त कहेंगे तो अकेले पर्याप्त आए, जब पंचेंद्रिय तिर्यंच कहते हैं तो उसमें पर्याप्त भी है और अपर्याप्त भी है। अब यहाँ जो त्रस बादर पर्याप्त की बात चल रही है, पर्याप्त प्रकृति बांध रहे हैं, अपर्याप्त भी बांध रहे हैं, पर्याप्त भी बांधते हैं, तो स्वोदय परोदय से बंद होता है ऐसा कहेंगे। यानी जो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीव है, लब्धि अपर्याप्त वाले, और वो पर्याप्त नाम कर्म को बांध रहा है, तो हम क्या कहेंगे, परोदय में बांध रहे। और जो स्वयं पर्याप्त जीव है और पर्याप्त नाम कर्म को बांध रहा है, तो हम कहेंगे स्वोदय से बनता है, क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृति का उदय संभव है। अंतिम लाइन में आएंगे हम, सुभग आदय और यश कीर्ति का बंध मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि इन गुणस्थानों में स्थोमे हुआ है, गुणस्थानों में। प्रतिपक्ष प्रकृतियों का उदय देखा जाता है। देखो इसको जरा फिर से देखते, किस किस की बात चल रही है, सुभग की, तो सुभग का बंद हो रहा है, तो आप बंद की विच्छित्ति याद कर रहे हैं, यहाँ उदय की विच्छित्ति की बात चल रही है, वही मैं बताने जा रही हूँ। देखो सुभग का बंद हो रहा है, तो हो सकता है दुर्भग का उदय हो या सुभग का हो। तो दुर्भग का उदय कहाँ तक हो सकता है? उदय बंधनी चौथे तक। दुर्भग अनादेय यशस कीर्ति का उदय हमने देखा चौथे के बंध विच्छित्ति। आदेय में भी ऐसा समझना, यश कीर्ति में भी ऐसा समझना। अयश के उदय की विच्छित्ति चौथे में, बंद की विच्छित्ति हमने छठे में देखी थी, सामान्य में गुणस्थानों में है ना। तो चौथे गुणस्थान में उदय की विच्छित्ति में हमने 17 प्रकृतियां देखी थी, उसमें सारे देवगति देवगति संबंधी जो कुछ वैकिरेक वैकिरेक अंगोपांग नरक संबंधी सब सभी अनुपूर्वी वहां लिए थे हमने। उसमें ये दुर्भग अनादेय और अयश कीर्ति लिया था। इसलिए यहाँ जो सुभग आदेय और यश कीर्ति का बंध होता है या तो उन्हीं के उदय में होगा या प्रतिपक्ष के उदय में होगा। और वो कहाँ तक? पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में। उदय चारों ही गुणस्थान तक हो सकता है, इसलिए वहाँ प्रतिपक्ष का उदय संभव है। संयता संयतों में इनका स्वोदय ही बंद होता है, क्योंकि उदय की विच्छित्ति हो गई चौथे वाले को, तो पाँचवें वाले को ये सुभग का ही उदय है, आदेय का ही है, यश कीर्ति का ही है, तो उसके ही उदय में वे ही बनती है, तो स्वोदय से बनती है ऐसा कहेंगे, क्योंकि उनमें प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदय का अभाव है। मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थानों में अयश कीर्ति का बंध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि इन गुणस्थानों में उसकी प्रतिपक्ष प्रकृति का भी उदय देखा जाता है। पहले तो यश कीर्ति का बंध देखा था स्वोदय परोदय में, अब कहते अयश कीर्ति का बंध वो भी स्वोदय परोदय में। संयता संयतों में उसका परोदय बंध होता है। देखो यश कीर्ति का बंध पांचवें गुणस्थान वाले को होता है तो स्वोदय में होता है, यानी यश कीर्ति का उदय चल रहा है और बंध भी हो रहा है ना। अब ये अयश कीर्ति की बात चल रही है, तो अयश कीर्ति का बंध पांचवें वाले को है कि नहीं है? छठे में उच्चित्ति होती है, छठे में विच्छित्ति होती है, उदय नहीं है, उदय चौथे तक ही है। पांचवें वाले को यश कीर्ति बनती है तो यश कीर्ति के उदय में बनती है। पांचवें वाले को अयश कीर्ति बंधेगी तो अयश की उदय में भी बन सकती है, सॉरी उल्टा बोला मैंने। पांचवें वाले को जो अयश कीर्ति बनती है वो यश कीर्ति के परोदय से ही बनती है। दोबारा कहूं यश कीर्ति का उदय तो पहले से आगे कहीं पांचवे तक हो सकता है, और अयश कीर्ति का उदय पहले से चौथे तक ही है। तो यश कीर्ति का बंध है वो चौथे तक परोदय और स्वोदय दोनों में होगा, पांचवे वाले को स्वोदय से होगा। और अयश के लिए चौथे तक स्वोदय परोदय है और पांचवे वाले को परोदय है। देखो इसको फिर पढ़ते हैं, चौथी लाइन। मिथ्या दृष्टि सासाधन समय दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि गुणस्थानों में अयश कीर्ति का बंध स्वोदय परोदय होता है, क्योंकि वहां तक अयश का उदय भी पाया जाता है ना, क्योंकि इन गुणस्थानों में उसकी प्रतिपक्ष प्रकृति का भी उदय देखा जाता है, यानी यश कीर्ति का भी उदय होवे या अयश का भी होवे। संयता संयतों में उसका परोदय बंध होता है, क्योंकि उसमें प्रतिपक्ष प्रकृति का ही उदय देखा जाता है, यानी यश कीर्ति का ही उदय है और अयश बन रही है तो हम कहेंगे परोदय से बन रही है। देवगति वैकिरेक शरीर वैकिरेक अंगोपांग देवगति प्राज्ञानुपुरी और उच्च गोत्र इनका परोदय बंध है, क्योंकि इन प्रकृतियों का तिर्यंचों को उदय ही नहीं होता। हाँ वैकिरेक शरीर परोदय बंद होता है, ये हमने देखा ना स्वोदय बंद होता है, वहां लिखा था वैकिरेक वाले को, वैकिरेक तेजस कारमान शरीर लिया था ना और हमने वैकिरेक उसमें से निकाल दिया था, यानी हाँ ध्रुवोदयी प्रकृतियां कही थी उन्होंने, उदय वाली प्रकृतियां बताई थी। सोदय बंद होता है 113 पृष्ठ पर नीचे की लाइन में था। इन प्रकृतियों को ध्रुवोदयी और सोदय बंद कहा था। औदारिक सोदय कहेंगे तो औदारिक का बंद मानना पड़ेगा, यहाँ हम वैकृत के बंद की चर्चा कर रहे हैं। उदय औदारिक का उसकी कोई ना नहीं है, वैकृत शरीर का बंद है वो सोदय में के परोदय में है, बांध रहा है वैकृत शरीर। नहीं, वहां आप औदारिक डालेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? सोदय बंद, हम वैकृत के, हम बंधने वाली प्रकृति हमारी फिक्स है, औदारिक वहां डालेंगे तो औदारिक के उदय में औदारिक बनता है, ऐसा होगा। हमें वैकृत के बंद की, वो सोदय से बंधी है कि नहीं उसकी चर्चा चलनी। वही तो वैकृत, हमने जो लिस्ट देखी है उसमें वैकृत के बंद की बात चल रही है। औदारिक कहाँ बंद की विच्छित्ति होती है वो तो कहेंगे हम, दूसरे गुण स्थान में होती है, उसकी चर्चा वहां नहीं है। क्योंकि पहले हमने सोचा ना वही एकरे निकाल कर औदारिक डालो, पर उसका अर्थ अलग हो सकता था, इसलिए वहां कुछ नहीं रखना है, तेजस कारमान ही रखा हमने। देखो देवगति वैकृत शरीर वैकृत अंगोपांग देवगति प्राग्ञानेपुरी उच्चगोत्र, इनका परोदय बंद होता है क्योंकि तिरियंचों में इनके उदय का विरोध है, लिखा ना देवेंद्र भाई, आप जो बता रहे थे ना वो तो वैकृत शरीर वाले कोई हो गए, उसकी बात नहीं है वहां पर। और ध्रुवोदयी, उनके ध्रुवोदयी कहेंगे तो सब में वो हमेशा उदय पाया जाना चाहिए, जैसे तेजस कारमान का पाया जाता है। ध्रुवोदयी कहते किसको है, हर समय और सभी में उसका उदय हो तो। अब ये निरंतर बंदी है कि सांतर बंदी, उसकी बात चलेगी। 5 ज्ञानावरणीय, 6 दर्शनावरणीय, एक सौ तेरह पर जो हमने करेक्शन किया उसके लिए यहाँ ये रेफरेंस है। आप क्या कह रहे थे? हाँ हाँ जरा जोर से। सिक्सटी थ्री में क्या लिखा है? हाँ ओरिजिनल सूत्र में क्या लिखा है? पेज नंबर, हाँ सूत्र पढ़ रहे क्या पढ़ रहे? हाँ सूत्र में किसको लिया है? वैकृत शरीर के बंध की कहाँ नहीं है? ये प्रकृतियां कौन सी बनता है, कौन से गुणस्थान तक? पांचवे गुणस्थान तक वाला जीव वैकृत शरीर को ही बांध रहा है, उसकी कहाँ नहीं है? वैकृत शरीर को सोदय से बनता है कि नहीं, इसमें विरोध चल रहा है, इसमें बात चल रही है। आप प्रश्न नहीं समझे। देखो ये जो 113 पृष्ठ को नीचे से दूसरी लाइन में उन्होंने वैकृत शरीर लिखा है, और वैकृत शरीर का बंध अगले पृष्ठ पर 114 पर जो लिखा है सोदय से बंध होता है, तो ये घटित नहीं होता क्योंकि तिरियंचों को औदारिक शरीर का उदय है नाम कर्म का, और वैकृत शरीर को बांध रहे हैं तो उसको हम कहेंगे परोदय से बांध रहे, इसलिए वहां से हमने वैकृत शब्द को हटाया है। हाँ ध्रुवोदय, तो उसमें तो उदय होता ही नहीं है। और यही बात अभी जो हमने वाक्य पढ़ा है 115 पृष्ठ पर पहले पैराग्राफ के अंत में, इनका परोदय बंद होता है, ये स्पष्ट शब्दों में लिख दिया ना उन्होंने, तो वहां ये वो लिस्ट में से वो तीनों को एक साथ ले लिया उन्होंने। तेजस कारमान को ही रखना था, वैकृत शब्दों को भी लिया साथ में, उसको हमने हटाया उसे। अब ये निरंतर की बात चलेगी, यहाँ पांच ज्ञानावरणीय, छह दर्शनावरणीय, आठ कषाय। देखो ये आठ ही कषाय लिए क्योंकि ये पांचवें में बनने वाली वहां विचित्ति होने वाली प्रकृतियों की बात चल रही है। चौथे में आएंगे तो हम अप्रत्याख्यानावरण को उसकी बात करेंगे, पहले में जाएंगे तो अनंतानुबंधी को भी ले लेंगे। आठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तेजस और कारमान शरीर, तेजस व कारमान शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, अगुरु, लघु, उपघात, निर्माण और पांच अंतराय, इनका निरंतर बंध होता है क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं। ये तो अपने लिस्ट में ये बैठता है बराबर। तेजस कारमान लिया ना, यहाँ पर ध्रुवबंदी की बात है, वहां ध्रुवोदयी कहा था उन्होंने। तेजस कारमान तो ध्रुवोदयी भी है, स्पर्श रस गंध वर्ण ध्रुवबंदी है, ध्रुवोदयी भी है। साता व असाता वेदनीय, हास्य रति, अरति शोक, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, यश कीर्ति अयश कीर्ति, इनका सांतर बंध होता है। अब इसमें क्यों, ये सारे प्रतिपक्ष वाली है ना, हाँ, क्योंकि एक समय में इनके बंध का विश्राम देखा जाता है, वो भी प्रतिपक्ष के कारण है। ये सांतर का कारण प्रतिपक्ष है, हमने पहले देखा था, वो परघात है, उच्छ्वास है, उद्योत है, आतप है, उसको भी सांतर कहते हैं, परंतु उसके कोई प्रतिपक्ष की बंद हो रहा है इसलिए रुक गई, ऐसा नहीं है। वो बंदी तो बंदी, नहीं बंदी तो नहीं बंदी। पुरुष वेद का मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों में सांतर व निरंतर बंद होता है। ये सांतर भी कहा और निरंतर भी कहा क्यों? सामान्य से हम देखेंगे तीन वेदों में से पुरुष वेद बन रहा है तो हम कहेंगे उसको सांतर है, कभी पुरुष वेद बन रहा है, कभी अन्य वेद। दूसरे गुणस्थान में स्त्री वेद या पुरुष वेद में से बनता है तो वहां प्रतिपक्ष है उसके लिए। तो निरंतर की अपेक्षा से मिथ्या तो गुणस्थान में भी निरंतर बंध है, वो किसके होता है? तो पद्म और शुक्ल लेशा वाले जीवों में, ये तीरियंचों की बात चल रही है, तो जो पद्मलेशा वाले और शुक्ल लेशा वाले तीरियंच है उनमें निरंतर बंध देखा जाता है। किसकी बात चल रही है? पुरुष वेद की बात, यानी पद्म शुक्ल लेशा वाले स्त्री वेद और नपुसक वेद वाले वाद उस वेद को नहीं बांधेंगे, पुरुष वेद को ही बांधेंगे। क्या ले? हाँ। शेष गुणस्थानों में निरंतर बंध होता है क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। तीसरे, चौथे और पांचवें गुणस्थान वाले पुरुष वेद का ही बंध करते हैं, उसके वहां प्रतिपक्ष प्रकृति नहीं पाई जाती। पंचेन्द्रिय, त्रस, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, इनका मिथ्या दृष्टि गुणस्थानों में सांतर निरंतर बंद होता है क्योंकि सांतर निरंतर क्यों? क्योंकि सामान्य से बात करेंगे तो कभी पंचेन्द्रिय जाति बनते, कभी अन्य जाति, और ये भी त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, इसके अगेंस्ट दूसरी भी प्रकृतियां बनती है ना उसकी प्रतिपक्ष वाली, त्रस के बदले स्थावर, बादर के बदले सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, प्रत्येक या साधारण, ये तो इन जनरल तीरियंचों की बात की है। अब कहते हैं जो तेजो, पद्म और शुक्ल लेशा वाले जीव है उनमें इनका निरंतर बंध देखा जाता है। हाँ, तेजो को भी लिया, शुभ लेशा वाले लिए, तीनों शुभलेशा वाले जीव हैं, वे इन्हीं प्रकृतियों को बांधेंगे। तेज, पद्म और शुक्ल लेशा वाले वो स्थावर है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, साधारण है, उसको नहीं बांधेंगे। शेष उपरिम गुणस्थानों में निरंतर बंध होता है क्योंकि वहां प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध का अभाव है। बंध की विच्छित्ति होती है पहले गुणस्थानों में, एक केंद्रीय, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त वगैरह वगैरह सारा है, तो उसके बाद ऊपर के गुणस्थानों में उसका बंध नहीं है। समचतुरस्र संस्थान का बंध मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टियों में सांतर निरंतर है क्योंकि असंख्यात वर्षायुष्क और तेज पद्म एवं शुक्ल लेशा वाले तीयंचों के इन गुणस्थानों में निरंतर बंध देखा जाता है। देखो जो असंख्यात वर्षा युष्क जो जीव है तीर्यंश, वो तो देवगति का ही बंद कर रहे हैं निरंतर, और वो समय चतुर्थ संस्थान को ही बांध देंगे। वैसे ही ये तीन शुभलेशा वाले तिरंचों में भी ऐसे ही पाया जाएगा। और ऊपर के गुणस्थानों में निरंतर है, क्योंकि वहाँ तो वही एकमात्र बंद होता है। अब हम रुकेंगे यहाँ, क्योंकि बड़ा बहुत पैराग्राफ है, कल बात करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई।